अभिमन्यु इशिका को तलाक देने के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रहा था। इसी बीच उसे इशिका का भेजा हुआ पार्सल भी मिल चुका था। अभिमन्यु को लगा कि ये प्रणाली ने भेजा है, इस वजह से वो इसे खोलना नहीं चाहता था। लेकिन गुस्से में जब उसने डॉक्यूमेंट फेंके तो वो पार्सल नीचे गिरने की वजह से अपने आप खुल गया। अभिमन्यु ने जब इशिका की भेजी हुई अंगूठी देखी तो वो पहचान गया। लेटर पढ़ने के बाद तो उसकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी थी। अभिमन्यु के दिमाग में एक ही लाइन बार बार आ रही थी जहां इशिका ने लेटर में लिखा था, मेरा नाम इशिका सिंघानिया है। इशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसने क्रॉस चेक करने के लिए मोबाइल नंबर को भी चेक किया तो वो इशिका के ही नंबर थे। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और कहा, इशिका, इशिका ही वो थी। मुझे याद आ रहा है, उसने मुझे हॉस्पिटल में बताया था कि उसने बचपन में एक लड़के की जान बचाई थी। अभिमन्यु को हंसी भी आ रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अचानक ही उसकी आंखों के सामने बचपन के सारे सीन आने लगे जब इशिका उसके साथ उस घर में रहती थी। इशिका ने बचपन में उसे खाना देना शुरू कर दिया था। एक रात जब वो अभिमन्यु के लिए खाना लेकर आई थी, खाना खाने के बाद अभिमन्यु जब सोने जाने लगा तो इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभिमन्यु ने उसकी तरफ पलटकर पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठ सकते हो? इशिका ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने कुछ पल सोचा और फिर हाँ में सिर हिला दिया था। वो वहीं पर बैठ गया। उसने इशिका को अपने पास आने का इशारा किया और फिर उसका सिर अपनी गोद में रखकर धीरे धीरे सहलाने लगा। जब मुझे नींद नहीं आती तो मेरी दादी भी ऐसा ही करती है, देखना अब थोड़ी देर में तुम्हें नींद आ जाएगी, अभिमन्यु ने इशिका के बालों को सहलाते हुए कहा। कुछ ही देर में इशिका को नींद आ चुकी थी, फिर तो वो हर रात उसकी गोद में सिर रखकर सोई थी। ये सब याद आते ही अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मन ही मन बोला, पता नहीं मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाया, थैंक गॉड मुझे वक्त रहते सच का पता चल गया, अब मुझे तुमसे अलग नहीं होना पड़ेगा। अभिमन्यु ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और इशिका को कॉल करने को हुआ, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ रुक गए थे। ऐसे नहीं बताऊंगा, बचपन से एक दूसरे के साथ इतना गहरा रिश्ता है तो उस रिश्ते के नाते एक सरप्राइज तो बनता है मिसेज राजवंश, अभिमन्यु ने धीरे से कहा और इशिका को एक सरप्राइज देने का सोचा। अभिमन्यु और इशिका ने अपने रिश्ते को कब का एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अभिमन्यु ने आज तक उसे ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया था। अब अभिमन्यु ने इशिका को कॉल करने के बजाय पृथ्वी को कॉल करके कहा, मुझे कुछ सामान चाहिए, वो अरेंज करवा देना। अभिमन्यु ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट पृथ्वी को बता दी थी। उसे सुनने के बाद पृथ्वी ने हैरानी से कहा, जहां तक मुझे पता है आप तो मैम को तलाक देने जा रहे हो, लेकिन आपने जो भी मंगवाया है उससे लग रहा है कि किसी को प्रपोज करने वाले हो। कहीं आप ये सब इसीलिए तो नहीं कर रहे ताकि मिस सिंघानिया अपने तलाक को भी अच्छे से याद रखें और उन्हें दुख ना हो? उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने आईज रोल किया और कहा, जो कहा है वो करो, वरना मुझे अपना मैनेजर बदलने में एक मिनट नहीं लगेगी। तुम जानते हो ना वेटिंग लिस्ट वैसे भी काफी लंबी है। अरे नहीं, मैं अरेंज करवाता हूं ना, पृथ्वी जल्दी से बोला। कॉल कट करने से पहले पृथ्वी ने अभिमन्यु से पूछा, और कुछ भी करना है तो बता दीजिए। हाँ, मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। अगर अभिमन्यु इशिका को ये बताता कि इशिका ही वो लड़की थी जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी, तो इशिका की तरफ से पहला सवाल यही आता कि फिर उसने प्रणाली को वो लड़की कैसे समझ लिया। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, पृथ्वी, मुझे जानना है कि आखिर प्रणाली हमें धोखा देने में कैसे कामयाब हो गई। शुरुआत में जब प्रणाली अभिमन्यु को मिली थी और उसने कहा कि उसकी अंगूठी खो गई है, तो अभिमन्यु को उस पर शक हुआ था। अभिमन्यु ने अपने शक को क्लियर करने के लिए कई सारे टेस्ट करवाए थे, जिनमें लाई डिटेक्टर टेस्ट भी था। प्रणाली उन सब टेस्ट में पास हो गई थी। वो एक मेंटल पेशेंट थी और एक मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये सब करना आसान नहीं था। यहां तक कि प्रणाली ने उस जगह की कहानी भी ठीक वैसे ही सुनाई थी जैसे जैसे सब कुछ घटित हुआ था। क्या उसने हमें धोखा दिया, पृथ्वी ने चौंकते हुए कहा। अभिमन्यु के बिना बताए ही पृथ्वी को समझ आ गया था। वो जल्दी से बोला, इसका मतलब प्रणाली वो लड़की नहीं थी जिसने आपकी जान बचाई थी, तो आखिर कौन है वो? वो इशिका है, अभिमन्यु ने बताया। वो कुछ पल रुककर आगे बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की इशिका हो सकती है। खैर, अब मुझे पूरी तरह इशिका की सच्चाई पर यकीन हो गया है, तो प्रणाली का सच पता लगाना भी जरूरी है। ठीक है, आप मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए, पृथ्वी ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। अभिमन्यु पृथ्वी के कॉल का इंतजार करते हुए खुद को काम में डुबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं था। अब उससे इंतजार नहीं हो रहा था कि कब वो इशिका के पास जाए और सारा सच उसे बता दे। सबसे ज्यादा खुशी अभिमन्यु को इस बात की थी कि अब उसे इशिका से अलग नहीं होना पड़ेगा। करेगा। लगभग एक घंटे बाद में पृथ्वी का कॉल आया। उसने कॉल पर कहा, सर मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर प्रणाली के कुछ टेस्ट करवाए थे और उससे पता चला है कि वो झूठ नहीं बोल रही है। तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि प्रणाली ही वो लड़की थी जिसने मेरी जान बचाई थी और इशिका झूठ बोल रही है? अभिमन्यु हल्के गुस्से में बोला। उसे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मेरी पूरी बात सुनिए। मुझे इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि मैंने पूरी टीम के साथ में केस कंसल्ट किया था, पृथ्वी ने बताया। और क्या कहा डॉक्टर्स ने? अभिमन्यु ने तुरंत पूछा। डॉक्टर ने बताया कि प्रणाली हमें धोखा नहीं दे रही है, बल्कि वो खुद को धोखा दे रही है, पृथ्वी ने जवाब दिया। मतलब क्या है कहने का? मैं कुछ समझा नहीं, अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। पृथ्वी ने गहरी सांस ली और आगे बताते हुए कहा, मैंने डॉक्टर को उसकी पुरानी रिपोर्ट भी दी थी। तब उन्होंने बताया कि प्रणाली की मानसिक स्थिति बचपन से ही ऐसी थी। शायद ऐसा उसके माँ बाप के टॉर्चर करने की वजह से हुआ होगा। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन जहाँ आपका किडनैप हुआ था वहाँ पर प्रणाली भी थी। उसने आपकी और मिस सिंघानिया की सारी बातों को सुना होगा। अपनी मानसिक हालत के चलते उसने खुद को मिस सिंघानिया समझ लिया था। जब वापस जाने के बाद उसके माँ बाप उसे टॉर्चर करते तो उसके दिल में यही उम्मीद थी कि आप उसे लेने आओगे और उससे शादी करोगे। ये सब उसकी मेंटल कंडीशन के चलते हुआ। डॉक्टर की पूरी रिपोर्ट के बारे में पृथ्वी ने अभिमन्यु को बता दिया था। उसका दिमाग उस कहानी को सच मान बैठा। शायद इसी वजह से किसी भी टेस्ट में वो फेल नहीं हुई। ओह, मैं ये पहले क्यों नहीं समझ पाया? वो पिछले 4 सालों से खुद के साथ साथ हमें भी बेवकूफ बना रही थी, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। पृथ्वी के सब बताने पर अचानक अभिमन्यु को याद आया कि वहाँ एक इशिका की उम्र की लड़की भी थी। वो काफी गंदी सी रहती थी और अपने बालों को मुंह पर डालकर रखती थी। वो हमेशा उन दोनों के आसपास रहती थी और उन्हें देखती रहती थी। इशिका कितनी भी गंदी स्थिति में क्यों ना रहे, वहाँ पर वो सबसे क्यूट और साफ सुथरी रहने वाली बच्ची थी,
अभिमन्यु ने मन ही मन कहा। प्रणाली वो लड़की थी ही नहीं, तभी उसके साथ रहने पर भी मुझे वो फीलिंग नहीं आई जो उस बच्ची के साथ आई थी। हम दोनों छोटे थे और उस वक्त प्यार जैसी फीलिंग को नहीं समझते थे, लेकिन उसके साथ एक अटैचमेंट हो गया था। इशिका को पहले ही ढूंढ लेता तो शायद उसे अपनी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें नहीं झेलनी पड़तीं। पिछले बीते सालों में पता नहीं वो कौन कौन से काम करके अपना गुजारा कर रही होगी। अभिमन्यु अपने गिल्ट में डूबा हुआ था। तभी पृथ्वी ने कहा, सर अब हमारे सामने सच आ गया है, तो प्रणाली के मामले में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में उसे अकेला छोड़ना भी इनसेंसिटिव होगा। एक काम करना, जब वो होश में आए तो डॉक्टर की मदद लेना, उसे सब सच बताने की कोशिश करना। अब से उससे जुड़ा सारा मामला तुम ही संभालने वाले हो। रही बात उसके इलाज की तो वो वैसे ही चलते रहना चाहिए, अभिमन्यु ने जवाब दिया। पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इशिका इस वक्त तैयार हो रही थी। वो उस अनजान शख्स से मिलने के लिए जा रही थी। कुछ ही देर में वो अपने बुक की हुई सीट पर पहुंची। रेस्टोरेंट में एक लड़की बैठी हुई थी जिसे देखकर इशिका उसके पास गई और बोली, तो तुम ही वो लड़की हो जो रात को मुझे मैसेज कर रही थी? सामने एक लड़की बैठी हुई थी जिसने ब्लैक कलर की लूज पैंट्स पहनी हुई थी और ऊपर ब्लैक टैंक टॉप के ऊपर ब्लैक ही ब्लेजर डाल रखा था। उसने ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए थे और अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रखा था। उस लड़की को देखकर इशिका को गुस्सा आने लगा। उसने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरी और अभिमन्यु की शादी की साजिश की थी? हाँ, वो मैंने ही किया था, उस लड़की ने जवाब दिया। कौन हो तुम और तुमने खुद को इस तरह छुपा क्यों रखा है? इशिका उसे देखने की कोशिश करते हुए बोली। वो लड़की कुछ देर के लिए चुप रही और फिर काफी धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ कि मैं कौन हूँ। बस इतना जान लो कि मेरे इरादे बुरे नहीं हैं और ना ही मैं तुम्हारा बुरा चाहती हूँ। प्लीज़ अभिमन्यु से तलाक मत लो, सिर्फ वही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। कल रात उसने इशिका को मैसेज में जो भी कहा था वो फिर से वही बातें उसी अंदाज में कहने लगी। इशिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, तो अपने साथ में एक हस्बैंड कम बॉडीगार्ड लेकर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें ज़रूरत है क्योंकि तुम सच नहीं जानती हो, वो लड़की जल्दी से बोली। बोलते हुए वो अचानक इमोशनल होने लगी। उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारा और सख्त अंदाज में कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम्हारी जान के ऊपर खतरा है। तो तुम ही बता दो मेरी जान पर कौन सा खतरा है? आज तक तो मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं आया। हाँ, एक बुरी औरत थी जो मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा थी, इशिका ने जवाब दिया। उस लड़की को समझ में नहीं आया कि वो इशिका को अपनी बात कैसे समझाए। इशिका उसे सुनने को तैयार नहीं थी। उसे चुप देखकर इशिका ने कहा, फिलहाल तो मुझे सबसे ज़्यादा खतरा तुमसे नज़र आ रहा है, जिसने मेरी शादी की साजिश की और इस तरह अब मेरे सामने खुद को छुपाकर बैठी हुई है। मैं खतरनाक नहीं हूँ और ना ही तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहती हूँ, बस ये सही वक्त नहीं है कि तुम मेरे बारे में जानो, उस लड़की ने इशिका की तरफ देखकर जवाब दिया। ओह ठीक है, तो जब सही समय आ जाए तब आकर सब कुछ बता देना। फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अभिमन्यु के पास पहुँचना है, कुछ देर में हमारा तलाक होने वाला है, इशिका ने बेपरवाही से कहा ताकि वो लड़की अपने बारे में सब सच बता दे। इतनी देर में उसे ये तो समझ आ गया था कि वो अभिमन्यु और इशिका का तलाक रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इशिका उठकर जाने लगी, तभी उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज़ रुको इशिका। इशिका उसकी तरफ पलटी, अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उस लड़की ने अपना मास्क और सनग्लासेस हटा दिए थे। उसे देखकर इशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उस लड़की को देखते ही इशिका ने तुरंत पहचान लिया था। वो हैरानी से बोली, तुम तो तुमने ये साजिश की थी। कौन हो तुम? तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और तुम मुझे धोखा दे रही थी? उस लड़की की आंखें शर्म से नीची हो गई थीं। इशिका की बातों से साफ था कि वो उस लड़की को पहले से जानती थी। उस लड़की ने सिर हिलाकर बिल्कुल धीरे से कहा, यहां मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। प्लीज मेरे साथ चलो, अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो बेवजह प्रॉब्लम हो जाएगी। अचानक ही उसने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ऊपर एक प्राइवेट रूम में लेकर गई। रूम में जाते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। कमरे के अंदर आते ही उसने मास्क और वो सारी चीजें पूरी तरह हटा दी थी जिससे उसकी पहचान वो छुपा सकती थी। वो लड़की इशिका की तरफ पलटी तो इशिका ने गुस्से में कहा, यकीन नहीं हो रहा, तुम पहले दिन से मेरे साथ खेल खेल रही थी। तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो ना, तभी तुम्हें इस बात का पता था कि मिसेस सिन्हानिया मेरी मॉम है और मुझे बदला गया था। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और अब तक क्यों धोखा देती रही? तुम अनन्या,